है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रियों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन से अब तक हमने देखा है कि इस पुस्तक के द्वारा हमने विश्वास, अब्राहम के विश्वास, याकूब के विश्वास और यहां तक कि नूह के विश्वास को देखा है। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि मसीही जीवन जीने के लिए हमारे पास कुछ निर्देश हैं और परमेश्वर के पास आने की हमें आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए इस पुस्तक के अंतिम अध्याय इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 8 पद से अध्ययन आरम्भ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थी और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए और विशेष करके हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी प्रार्थना है कि आज के अध्ययन के द्वारा आप प्रत्येक के जीवन से बोले और बातचीत करें, एक एक के जीवन को प्रभु आप छू लें। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में है, निराश और परेशान है, चिंता और तनाव में है। पिताजी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, उन्हें छुएं और चंगाई प्रदान करें, उन्हें शांति और आनंद प्रदान करें, ताकि आज के वचन के द्वारा वे इस बात को गहराई से महसूस कर सकें कि आप उनके साथ में हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप प्रत्येक पर अपनी आशीष दें, जो अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं उनके जीवन से बातचीत कर, ताकि वे जाने पाएं कि आप उनसे भी प्रेम करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। प्रभु जी, आज हम सब से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब आप मेरे साथ इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। लिखा है यीशु मसीह। जी हाँ, परमेश्वर के वचन में संयोग की बात नहीं होती है। एक भी वचन लापरवाही से नहीं लिखा गया है। यीशु प्रभु का सांसारिक नाम है, मसीह उसका पदनाम है, अर्थात उसके ईश्वरत्व को प्रकट करता है। मेरे मित्रों, यीशु नाम के द्वारा वह मनुष्यों से जुड़ा हुआ है। यीशु नाम के द्वारा वह संसार के महामहिमनों के बीच में पहचाना जाता है। इस पृथ्वी पर रहते समय यीशु कैसा महान मनुष्य था। वह मानवता से पूर्ण था, इसलिए मनुष्य उसे घेरे रहते थे, वे उसके पीछे पीछे चलते थे और उससे प्रेम करते थे। वे उससे नहीं, उसकी शिक्षाओं से, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि उसकी शिक्षाओं के विरुद्ध भी लोग खड़े थे। वह तो एक महान मनुष्य था। मसीह शब्द इस पृथ्वी पर उसके दिव्य कार्य का सूचक है। वह देहधारी परमेश्वर था। जी हाँ, वह मसीह यीशु है जो एक सा है। मैं इस अद्भुत पद को समझाने योग्य नहीं हूं, परंतु यह अवश्य कहूंगा कि यह पद परमेश्वर के वचन में सबसे अधिक दुरुपयोग में लिखा गया है। बहुत से लोग इस पद के आधार पर कहते हैं 2012 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु पृथ्वी पर रहते समय चमत्कार किया करता था, अतः हमें भी चमत्कारी होना है। 2012 वर्ष पूर्व वह रोगियों को चंगा करता था, अतः हमें भी रोगियों को चंगा करना है। वह आज भी इसी सेवा में है। मेरे मित्रों, यीशु एक सा है, परंतु हमें समझना है कि वह एक सा कैसे है। उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसके गुण आदि सब एक से ही हैं, परंतु उसके स्थान और कार्यों में वह एक सा नहीं है। इस्राएल की यात्रा में बहुत से लोग गए हैं और उन्होंने उसे वहां नहीं देखा, और उस संपूर्ण देश में उसकी उपस्थिति के बहुत ही कम प्रमाण देखे जाते हैं। 2012 वर्ष पूर्व वह वहां एक शिशु रूप में था, परंतु आज न तो वह शिशु है और न ही बैतलहम में है। कुछ समय बाद वह नासरत की सड़कों पर खेलता हुआ एक बच्चा था, परंतु आज मैं उसे वहां नहीं देखता, जबकि मैंने वहां अनेक बालक देखे हैं। जी हां, अभी भी बच्चे उन सड़कों पर खेलते होंगे। कुछ वर्षों बाद वह बड़ा हुआ और वहां घूमता फिरता रहा और रोगियों को चंगा किया। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि वह गुलगुता भी देखा, परंतु न तो वहां क्रूस था और न ही क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु था। इस पत्री का मुख्य विचार है कि वह परमेश्वर की दाहिने ओर है। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। और हमें, जी हाँ, 12 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना है। 2012 वर्ष पूर्व वह हमारी मुक्ति का कार्य पूरा करके परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है। आज वह वहां है, परंतु भविष्य में एक दिन वह पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करने के लिए आएगा। उसने अभी अपनी कलीसिया को स्वर्ग में नहीं उठाया है, परंतु एक दिन अवश्य उठा लेगा। अतः यीशु स्थान और कामों में एक सा नहीं है, वह गुणों में एक सा है। 2012 वर्ष पूर्व वह हमारे स्तर पर उतरने वाला परमेश्वर था। इसराइल देश में इस सत्य पर विचार करके मैं चकित होता हूँ। उस स्थान में तब न तो धन धान्य था, न दिखावा था और न ही कोई समारोह था। वह उस युग के राज्य की राजधानी रोम में नहीं आया था, न ही वह संस्कृति का केंद्र एथेंस में आया था। वह तो रोमी साम्राज्य के एक बाहरी क्षेत्र में सामान्य मनुष्य के रूप पर आया था। मेरे मित्रों, हम प्रभु यीशु के मनुष्यत्व के विषय चर्चा करते हुए डरते हैं कि कोई हमें गलत न समझे। हम उस पर उतना बल नहीं देते जितना आवश्यक है। हम उसके ईश्वरत्व पर अधिक बल देते हैं, जो एक प्रकार से आवश्यक भी है, क्योंकि मुक्त विचारक केवल उसके मनुष्यत्व की चर्चा करता है, जिसे वह ठीक से जानता भी नहीं है। मेरे विचार में प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर सबसे अधिक आकर्षक मनुष्य था, क्योंकि वह परिपूर्ण एवं वास्तविक मनुष्य था। मेरे मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जनसमूह उसकी ओर आकर्षित होकर उसके पीछे क्यों चलता था? वह सामर्थी और अत्यधिक मृदु स्वभाव का था। यही कारण था कि बच्चे उसके पास आते थे। उसने सर्राफों को मंदिर से खदेड़ा, क्योंकि वह शक्तिशाली था, उसमें आकर्षण था, मनुष्य उससे प्रेम करता था, इसलिए उसके पीछे पीछे जाता था। कफरनहूम में उसने एक कोढ़ी को चंगा किया था। उसे तुरंत ही वहां से चले जाना पड़ा, क्योंकि भीड़ उस पर गिरती थी और वह सेवा नहीं कर पा रहा था। मेरे मित्रों, चुंगी लेने वाले, कर लेने वाले और पापी भी उसके पास आते थे। इस कारण धर्मी जन उससे क्रोधित होते थे। यदि आज वह आपके नगर में आए तो आपकी कलीसिया में नहीं आएगा। वह जन साधारण में बच्चों को गोद में उठा रहा होगा। अपनी सेवा के अंत में जब वह यरीहो से होकर जा रहा था, तब भीड़ के कारण जक्कई नामक व्यक्ति ने, जो उसे देख नहीं पाया, अतः वह एक पेड़ पर चढ़ गया कि उसे देखे। हमारे प्रभु यीशु ने उसे पेड़ पर से उतारा। प्रभु यीशु मनुष्य की आवश्यकता के प्रति कैसा संवेदनशील है और अपने व्यक्तित्व में वह कैसा महान था। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि उसका व्यक्तित्व मनुष्यों को आकर्षित करता था, न कि उसकी शिक्षाएं। मनुष्य के पाप मोचन के लिए उसकी मृत्यु की घोषणा लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उसकी शिक्षा आरंभ ही से मनुष्य को चुभती थी। वह कहता था कि वह जीवन की रोटी है और वह अपनी जान देने आया है कि मनुष्य को आत्मिक जीवन मिले। उसने कहा कि मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता यदि यह परमेश्वर की ओर से ना हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 65 से 68 पद में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पत्रस ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। 12 को छोड़ सब के सब चले गए। क्यों? उसकी शिक्षा के कारण। उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर शमौन पत्रस ने उसे झिड़का भी था। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 22 पद में, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। उसके निष्ठावान शिष्यों ने उसकी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया था। प्रभु यीशु के संपर्क में आकर मनुष्य ने अनुग्रह और सत्य देखा। जी हाँ, उन्होंने मधुरता और सामर्थ्य देखा, दीनता और वैभव देखा, ज्योति और प्रेम देखा। वह तो मनुष्य के लिए आकर्षक का कारण था, परंतु उसकी मृत्यु के कारण क्रूस ठोकर बन गया। क्रूस तो आज भी ठोकर का कारण है, परंतु यीशु आकर्षक ही है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु कहता है, पाप से मन फिराओ, तुम पाप में नहीं जी सकते, मैं तुम्हें मुक्त कराने आया हूं, मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए दे दूंगा, परंतु तुम्हें पाप का बोध लेकर मेरे पास आना होगा। निराशा में मनुष्य उसके पास आता था, आज भी उसके पास आने का यही तरीका है। इसलिए यदि आप बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, आप पाप में जीवन जी रहे हैं, अपने पापों का पश्चाताप करें और उसके पास आ जाएं, क्योंकि उसके पास आने का यही तरीका है। काश मैं उसे वैसा ही दिखा पाऊं जैसा वह पृथ्वी पर 2012 वर्ष पूर्व था। आज आपका दुख उसका दुख है, आपका आनंद उसका आनंद है, वह भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। जी हाँ, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, वह कभी नहीं बदलेगा। एक दिन हम उसकी उपस्थिति में होंगे। मेरे मित्रों, वह अद्भुत है और आपके लिए उसे जानना आवश्यक है, चाहे आप कोई भी क्यों न हो। पौलुस ने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवन के अंत में भी उसे अधिकाधिक जानने की आवश्यकता है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मार्ग को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। आज मेरी एक ही मनोकामना है कि उसको जानूं और उसके वचन का प्रचार करूं। मैं इससे अधिक उत्तम काम और कोई नहीं जानता। मेरे मित्रों, मैं आपके साथ डॉक्टर स्कोफील्ड के विचार को बांटना चाहता हूं। मेरे विचार में प्रभु यीशु की सुंदरता उसके पूर्ण मनुष्यत्व में है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि वह सिद्ध मनुष्य था, परंतु यह कि वह मनुष्यता में सिद्ध था। हर एक बात में, हमारे पाप और हमारे दुष्ट स्वभाव में, वह हमारे साथ एक है। वह डील डॉल और अनुग्रह में बढ़ता गया। वह परिश्रम करता था, रोता था, प्रार्थना करता था और प्रेम भी करता था। वह हर बात में जी हाँ, पाप को छोड़ हमारे समान परखा गया। थोमा के साथ हम उसे प्रभु एवं परमेश्वर कहते हैं, हम उसे सराहते हैं और उसको श्रद्धा अर्पित करते हैं। मेरे प्रभु जैसा कोई नहीं जो हमारे साथ ऐसी घनिष्ठता बनाए कि हमारे मन के अति निकट आ जाए। संसार में ऐसा कोई नहीं जिससे हम इतना कम डरें। वह हमारी 21वीं शताब्दी के जीवन में ऐसी आसानी से घुल मिल जाता है कि जैसे वह हमारे ही मोहल्ले में पला बड़ा हुआ व्यक्ति हो। मेरे प्रियो, हम उसे मसीह यीशु कहते हैं क्योंकि उसका नाम यीशु उसे हमसे जोड़ता है और महापुरुषों में जाना जाता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य उसे घेरे ही रहते थे, वे उसके पीछे पीछे चलते और उससे प्रेम करते थे। यीशु कभी नहीं बदलता, अर्थात उसके गुण कभी नहीं बदलते हैं। वह आज भी वैसा ही है। जी हाँ, वैसा ही अनुग्रहकारी प्रेमी प्रभु है जैसा वह 2012 वर्ष पूर्व था। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। अनेक धार्मिक पंथों में कुछ भोजन वर्जित हैं। मैं मानता हूं कि समस्यावर्धक भोजन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, परंतु भोजन और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 8 पद में पौलुस लिखता है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि हम खाएं तो कुछ लाभ नहीं। अतः लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि विचित्र विचारों और शिक्षाओं और अध्ययन समूहों में मत फंसो कि वे आपको ढोंगी बनाएं। संसार में आपके निर्माण के लिए परमेश्वर के वचन की अपेक्षा और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको प्रभु यीशु के निकट लाकर आपका निर्माण करेगा। केवल पवित्र आत्मा ही प्रभु की बातें आपके जीवन में वास्तविक बना सकता है। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसके 10 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। यहाँ पुरानी वाचा में इसराइल को जो प्राप्त था और नई वाचा की उत्तम वस्तुओं में तुलना की गई है। आज विश्वासियों के पास एक वेदी है जिसे हम गलती से प्रभु भोज की मेज कहते हैं। हमारी वेदी सांसारिक नहीं है, स्थानीय नहीं है। हमारी वेदी स्वर्ग में है। वह स्वर्ग में अनुग्रह का सिंहासन है। वह वास्तव में न्याय का सिंहासन था जो हमें दोषी ठहराता था, परंतु अब क्योंकि वहां लहू रख दिया गया है इसलिए हम अनुग्रह और उद्धार पाते हैं। मेरे प्रियो, यहां मैं कहना चाहता हूं कि मसीही सहभागिता कलीसियाई भोज नहीं है। मैं वर्षों से सुनता आ रहा हूं, आप भोज में पधारें और महान मसीही सहभागिता पाएं। नहीं मेरे मित्रों, आप वहां केवल अच्छा समय गुजारने और पेट भरने के लिए जाते हैं। सच्ची मसीही सहभागिता तो परमेश्वर के वचन में है, क्योंकि वह आपको प्रभु यीशु के पास लाता है और आपको उसे महिमा में दिखाता है। वही आपको अन्य विश्वासियों के साथ सहभागिता और सुंदर समय व्यतीत करने से अलग करता है और सच्चे विश्वासियों की संगति में लाता है। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती हैं। ध्यान दीजिए, लेखक पाप बलि के संदर्भ में कह रहा है, प्रभु यीशु इसलिए मरा कि हम पापी थे, ऐसा नहीं कि हमने पाप किया, परंतु हम स्वभाव ही से पापी थे। उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए कि हम नया स्वभाव पाएं। तब हम आगे पढ़ते हैं इब्रानियों 13 अध्याय उसके 12 पद में, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु नगर के बाहर मरा। क्यों? क्योंकि वह पाप बलि था। पाप बलि को मंदिर से उठाकर नगर के बाहर जलाया जाता था। यीशु हमारी पाप बलि था। उसने हमारे पाप का दंड भोगा ताकि मैं और आप बच जाएं। इसलिए वचन में लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने आपके पापों को भी अपने ऊपर उठा लिया। वह आपके पापों के बदले भी मरा है और वह मृतकों में से फिर जी उठा है, आज भी जीवित है। और यही कारण है कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु आपके पापों को क्षमा कर सकता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में यीशु के नाम के अलावे कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यदि आज आप मुक्ति पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, पापों से क्षमा पाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु के पास आ जाएं, क्योंकि वह इसीलिए मरा ताकि आप बच जाएं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
राजाओं का